लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस के कजाकिस्तान की प्रेरित यात्रा पर संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
करी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो। La settimana scorsa, da martedì a giovedì, mi sono recato in Kazakistan.
विगत सप्ताह मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक मैंने विश्व पारंपरिक धर्मों और उनके नेताओं के संग सातवें मिलन समारोह के अवसर पर मध्य एशिया के एक अति विशाल देश कजाकिस्तान की प्रेरित यात्रा की। उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और देश के अन्य सभी अधिकारियों की उदारतापूर्ण प्रयास हेतु अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। उन्होंने कजाकिस्तान की कलीसिया और उसकी देखरेख में समर्पित धर्माध्यक्षों और सभी सहयोगियों के कार्य हेतु उनका धन्यवाद अदा किया। संत पापा ने कहा,
Come dicevo, il motivo principale del viaggio è stato prendere parte al congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali.
कजाकिस्तान की प्रेरित यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व के पारंपरिक धर्मों के नेताओं से मिलन था। इसकी पहल विगत 20 सालों से की जा रही थी, जो अपने को विश्व के लिए एक मिलन और वार्ता के स्थल स्वरूप पेश करती है, विशेषकर धार्मिक स्तर पर, जो इसे शांति और भ्रातृत्व के एक अग्रिम नायक स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह सम्मेलन का सातवां संस्करण था। एक देश जिसकी आजादी के 30 साल हो चुके हैं, जबकि वह पहले ही हर 3 साल में इस सम्मेलन को 7 बार आयोजित कर चुका है। इसका अर्थ धर्म को विश्व की धुरी पर रखना है, जहां हम एक दूसरे को सुनते और उनकी विविधता का सम्मान करते हैं। संत पापा ने इसके लिए कजाक सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सापेक्षवाद नहीं है, बल्कि यह सुनना और सम्मान करना है। कजाक सरकार ने खुद को नास्तिक शासन के जुए से मुक्त करने के बाद अपने को भ्रमित किए बिना स्पष्ट रूप से कट्टरवाद और अतिवाद की निंदा की और अपने को एक संतुलित और एकता के देश स्वरूप पाया। संत पापा ने कहा,
Il congresso ha discusso e approvato la dichiarazione finale che si pone in continuità con quella firmata ad Abu Dhabi.
इस सम्मेलन ने सन 2019 में अबू धाबी में हुए मानव भ्रातृत्व के दस्तावेज पर चर्चा की। उन्होंने कहा, मैं इसे संत योहन पॉलुस द्वितीय द्वारा शांति के लिए ऐतिहासिक अंतरधार्मिक संगोष्ठी का एक कदम कहता हूँ, जिसका आयोजन उन्होंने सन 1986 को असीसी में किया था। दूरदर्शिता नहीं होने के कारण इस आयोजन की बहुत आलोचना हुई थी। संत पापा फ्रांसिस ने इस संदर्भ में संत पापा योहन तृतीय और संत पापा पॉलुस छठवें की दूरदर्शिता को घोषित किया, जो विश्व के कई महान धर्मों और हस्तियों से मेल खाते हैं, जिसमें से एक महात्मा गांधी हैं। हम कैसे उन असंख्य शहीदों, सभी देशों और भाषा भाषियों के नर और नारियों को याद नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने ईश्वरीय शांति और भ्रातृत्व के प्रति निष्ठा में बने रहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा,
Lo sappiamo, i momenti solenni sono importanti, ma poi è l'impegno quotidiano e la testimonianza concreta che costruisce un mondo migliore per tutti.
हम सभी जानते हैं गंभीर क्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी यह दैनिक प्रतिबद्धता है, यह ठोस साक्ष्य है जो सभी के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि इस सम्मेलन के अलावे इस प्रेरितिक यात्रा ने मुझे कजाकिस्तान के अधिकारियों और वहां की सजीव कलीसिया से भेंट करने का अवसर दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के अधिकारियों की उदारता की पुनः याद की और उन्हें मिलन का एक देश निरूपित करते हुए कहा कि वहां वास्तव में करीबन 150 विभिन्न जातियों का आपसी सह अस्तित्व है जो करीब 80 भाषाएं बोलते हैं। यह एक बुलाहट है जो इसकी भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास का प्रतिफल है, जिसका स्वागत और आलिंगन करते हुए हमें इसे प्रोत्साहित और मदद करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि एक ऐसे परिपक्व लोकतंत्र का निर्माण जारी रहेगा जो समग्र रूप से समाज की जरूरतों को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यह अपने में कठिन कार्य है जो समय लेता है, लेकिन कजाकिस्तान ने इस बात का एहसास किया है और सकारात्मक कदम लेते हुए परमाणु हथियारों को ना कहा है। वह अपनी अच्छी ताकतों और पर्यावरण की नीतियों का विकास कर रहा है। यह एक साहसपूर्ण निर्णय है ऐसे समय में जब कष्टदायक युद्ध हमें परमाणु हथियारों के बारे में सोचने को प्रेरित करते हैं, जबकि इस देश ने शुरू से ही परमाणु हथियारों को नहीं कहा है। संत पापा ने कजाकिस्तान के कलीसियाई समुदाय के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा,
Per quanto riguarda la Chiesa, mi ha tanto rallegrato incontrare una comunità di persone contente, gioiose, con entusiasmo.
मुझे वहाँ के समुदाय से मिलकर खुशी हुई। वे अपने में आनंद और उत्साह से भरे हैं। उस विशाल देश में कैथोलिकों की संख्या कम है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि विश्वास के जीवन को जिया जाए तो यह सुसमाचार प्रचार को फलहित करेगा। छोटे समुदाय के रूप में हमारा धन्य होना, खमीर बनना, नमक और दिए बनना, जहां हम मानवीय बातों पर नहीं बल्कि सिर्फ ईश्वर के हाथों में अपनी निर्भरता को पाते हैं। उन्होंने कहा कि ख्रिस्तियों का अल्पसंख्यक होना उन्हें दूसरे धर्मावलंबियों के संग अपने संबंधों को विकसित करने की मांग करता है, जहां वे भ्रातृत्व में बढ़ते हैं। एक छोटा समुदाय, लेकिन वह अपने में बंद सुरक्षात्मक ना हो बल्कि पवित्र आत्मा में विश्वास करते हुए अपने को खुला रखे, जो जहां चाहते स्वतंत्र रूप में हमें ले चलते हैं। संत पापा ने वहां की पवित्र ईश प्रजा शहीदों की याद की, जिन्हें विश्वास के कारण 30 सालों तक नास्तिकता का कष्ट सहना पड़ा। विश्वास के कारण वे प्रताड़ित किए गए, जेल में डाले गए और मार डाले गए। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Con questo gregge piccolo ma gioioso abbiamo celebrato l'Eucaristia sempre a Nur Sultan nel piazzale dell'Expo 2017, circondato di architetture ultramoderne.
उन छोटे विश्वासी समुदाय के साथ हमने नूर सुल्तान अति आधुनिक वास्तुकला से घिरा एक्सपो 2017 स्थल में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। यह पवित्र क्रूस का त्यौहार था, जहां हमने इस बात पर चिंतन किया कि प्रगति और प्रतिगमन आपस में जुड़े हुए हैं। यीशु का क्रूस हमारे लिए सदैव मुक्ति का स्रोत बनता है। यह हमारे लिए आशा की एक निशानी है, क्योंकि यह ईश्वर के करुणा, प्रेम और निष्ठा से जड़ित है। संत पापा ने अपने प्रेरितिक यात्रा के लिए पुनः ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कजाकिस्तान के भविष्य के लिए प्रार्थना की कि वह तीर्थयात्री कलीसिया स्वरूप अधिक फलदायी बने। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने कजाकिस्तान की प्रेरितिक यात्रा का अपना छोटा विवरण समाप्त किया और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc luce tuisque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kya de sakta kya la sakta kehta tujhe bas shukriya. Kya de sakta kya la sakta kehta tujhe bas shukriya. Tujh mein hi meri subah, tujh mein hi har shaam, tujh se hi karta shuru har koi kaam. Tujh mein hi meri subah, tujh mein hi har shaam, tujh se hi karta shuru har koi kaam. Shukriya karta hu leke tera naam aadar aur dhanyavaad aaj tere naam shukriya 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 tera shukriya shukriya.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के समापन पर सभी विश्वासियों से यूक्रेन के महान और शहीद लोगों के लिए प्रार्थना करने और अपने विचारों में उनके करीब रहने के लिए कहा। संत पापा ने कहा कि उन्होंने कल कार्डिनल कोनराड क्राइस्की से फोन पर बातें की, जो यूक्रेन में मानवीय और प्रेरितिक मिशन पर अपनी चौथी यात्रा में हैं। परम धर्मपीठ उदार सेवा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल क्राइस्की ने संत पापा को पीड़ित यूक्रेन की भयानक स्थिति से अवगत कराया। कार्डिनल क्राइस्की ने लोगों की मदद करने और वहां सभी लोगों के प्रति संत पापा की निकटता दिखाने के लिए अक्सर यूक्रेन की यात्रा की है। कार्डिनल के साथ हुई फोन पर अपनी बातचीत को याद करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने लोगों की पीड़ा, बर्बरता, भयानक कृत्यों और यातनाग्रस्त शरीरों की खोज के बारे में सुनकर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सभी से इन महान और शहीद लोगों के करीब आने के लिए कहा, जिन्होंने बहुत कष्ट सहा है। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस है और संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने और उनकी देखभाल करने वाले परिवारों का समर्थन करने का आह्वान किया। संत पापा ने कहा, आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, एक ऐसी बीमारी जो कई लोगों को प्रभावित करती है, जिन्हें अक्सर इस बीमारी के कारण समाज के हाशिए पर रखा जाता है। हम अल्जाइमर के रोगियों के लिए, उनके परिवारों के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो प्यार से उनकी देखभाल करते हैं, ताकि उन्हें समर्थन और मदद मिल सके। मैं अपनी प्रार्थना में हेमोडायलिसिस, डायलिसिस और प्रत्यारोपण किए हुए पुरुषों और महिलाओं को सम्मिलित करता हूं जो यहां उपस्थित हैं और अनेकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अल्जाइमर रोग सबसे आम प्रकार का डिमेंशिया है। अनुमानतः 60-70% मामले अल्जाइमर के होते हैं, जबकि सामान्य रूप से डिमेंशिया सभी बीमारियों में मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण है। उधर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रेरितिक समूहों द्वारा आयोजित कला और विश्वास पहल के हिस्से के रूप में संत पेत्रुस के जीवन को दर्शाते हुए रविवार 2 अक्टूबर को रात 9 बजे से एक विशेष वीडियो संत पेत्रुस महागिरजाघर के अग्रभाग पर दर्शाया जाएगा। मेरा अनुसरण करो। महान संत पेत्रुस के जीवन और प्रभाव की जांच और चिंतन करने के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रेरितिक समूह द्वारा आयोजित एक नए कला और विश्वास कार्यक्रम का हिस्सा है। रविवार 2 अक्टूबर से रविवार 16 अक्टूबर तक हर रात 9 बजे इसे प्रदर्शित किया जाएगा। वीडियो करीब 8 मिनट तक चलेगा।
उधर वाटिकन सिटी राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वैश्विक शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिक्षा में परिवर्तन संबंधित शिखर सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा में परिवर्तन संबंधित एक प्रमुख सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में युद्ध, दुनिया में चल रहे कई अन्य संघर्षों के बीच वैश्विक शैक्षिक समझौते की आवश्यकता को और भी जरूरी बना दिया है। कार्डिनल पारोलिन ने न्यूयॉर्क में नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा हमें हमारे समाजों में कई मौजूदा फ्रैक्चर को दूर करने में मदद करेगी, मानव बंधुत्व और आपसी एकजुटता के मूल्यों के आधार पर मजबूत और अधिक लचीला समुदायों का निर्माण करेगी। शिक्षा के मौजूदा वैश्विक संकट के जवाब में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस द्वारा 16 से 19 सितंबर तक 3 दिवसीय शिक्षा में परिवर्तन संबंधित एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अपनी टिप्पणी में कार्डिनल पारोलिन ने उन तरीकों पर प्रकाश डाला जिनमें कैथोलिक कलीसिया इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सक्रिय रूप से संलग्न है। विश्व भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 70 मिलियन से अधिक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कैथोलिक कलीसिया जो शुरू से सुसमाचार प्रचार के साथ हमेशा ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान के प्रसारण के साथ मठों के माध्यम से संस्कृति के केंद्र के रूप में स्थानीय कलीसियाओं से जुड़े, अनगिनत स्कूलों के माध्यम से और पश्चिमी दुनिया में पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। लगभग 220,000 स्कूलों और सभी महाद्वीपों में फैले 1,365 विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा की अग्रिम पंक्ति में लगे रहना जारी है, जहां 70 मिलियन से अधिक छात्र, जिनमें कई गैर कैथोलिक और गैर ईसाई हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि शिक्षा के इस समग्र दृष्टिकोण को लाने के लिए संत पापा ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को 4 स्तंभों द्वारा निर्देशित होने के लिए आमंत्रित किया। पहला स्तंभ स्वयं को जानना, दूसरा पड़ोसी को जानना, जो हमें दूसरे को ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर सबसे कमजोर लोगों को। तीसरा स्तंभ है सृष्टि को जानना, हमें अपने सामान्य घर की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। अंतिम स्तंभ उन सभी को समाहित करना, वह है पारलौकिक को जानना। वास्तव में यह मानवता के भाग्य और बुलाहट के प्रति तनाव है जो शिक्षा को इतना गहरा अर्थ देता है और युवाओं को इसके मूल्य के बारे में आश्वस्त करता है। संत पापा शैक्षिक संगठनों को अपनी परियोजनाओं और पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं, जिसमें 7 पथ शामिल हैं। मानव व्यक्ति को उनके मूल्य और गरिमा में हर शैक्षिक प्रयास का केंद्र बनाना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय, शांति और एक सम्मानजनक जीवन के भविष्य का निर्माण करने के लिए बच्चों और युवाओं की आवाज सुनना, शिक्षा में लड़कियों और युवतियों की पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करना, परिवार को शिक्षा का पहला और आवश्यक स्थान बनाना, सबसे कमजोर लोगों को स्वीकृति और खुलेपन की आवश्यकता पर शिक्षित करना, एक अभिन्न परिस्थितिकी के संदर्भ में मानव परिवार की सेवा में अर्थव्यवस्था, राजनीति, विकास और प्रगति को समझने के नए तरीके खोजना और अंत में हमारे आम घर की रक्षा करना। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।